कुछ समय हमारे पास और है। अभी एक दूसरे विषय पर हम चर्चा चालू करते हैं। ब्रह्मचर्य। एक है पवित्रता और दूसरा है ब्रह्मचर्य। पवित्रता इस जीवन का आधार है, पवित्रता इस जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता ब्राह्मणों का स्वधर्म है, स्वरूप है। और इस पवित्रता का जो आधार है वो है ब्रह्मचर्य। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की बहुत सारी महिमा गाई है। वह आचरण, वह चर्या जो ब्रह्म में स्थित करे, अर्थात ब्रह्मचर्य। ऐसी चर्या, दिनचर्या रात्रिचर्या दोनों ही, रात्रिचर्या और दिनचर्या दोनों ही जो ब्रह्म में स्थित करे। ज्ञान में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम विकार को जीतना नहीं है। वह आचरण जो ब्रह्मा के समान बनाए वह ब्रह्मचर्य। वह आचरण जो आत्मा को पवित्रता की मंजिल तक पहुंचाया जाए, सबसे पहले है संयम, फिर है ब्रह्मचर्य, फिर है पवित्रता, और उसके भी बाद एक शब्द है पावन। देवताएं पावन है, संपूर्ण पावन। जिन्हें अपवित्रता की अविद्या है उन्हें पता ही नहीं अपवित्रता क्या होता है, क्या होती है, वो पावनता का। तो इस ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा है। आज यदि इस यज्ञ में कोई एकमात्र बाधा है, एकमात्र विघ्न है, तो वो है अपवित्रता। यज्ञ को बाहर के किसी शत्रु से भय नहीं है। बाहर का कोई शत्रु इस दुर्ग में नहीं आ सकता। भय है केवल एक ही चीज से, अंतर्कलह। भय है इसी अपवित्रता से। विकारों का आकर्षण और देह का आकर्षण समाप्त करने के लिए एक घनघोर साधना की आवश्यकता है। अमृत वेला कर लिया, मुरली क्लास सुन ली, पॉइंट्स नोट कर लिए, नुमा श्याम का योग कर लिया, रात को चार्ट लिखा और सो जाना, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेले उठना, अच्छा अमृत वेला करना, उसके बाद सोना नहीं, ज्ञान का चिंतन मनन करना, उसके बाद मुरली सुनना, रेगुलर मुरली सुनना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, कर्म में बीच बीच में याद करना, नुमा श्याम का योग करना, रात्रि में मुरली थोड़ी पढ़ना और गुड नाइट करके सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। हमें क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ। यह तो साधारण सी दिनचर्या है, यहीं पे नहीं रुक जाना है और समझना है हम अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं। अपने पुरुषार्थ के प्रति असंतुष्टता का भाव हो, आग हो, आग एक अतृप्ति हो कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, तब तक नहीं बढ़ा जा सकता। अगर हम केवल ये सोच ले कि ये सब हमारी दिनचर्या और बहुत श्रेष्ठ है, किसी को दुख नहीं दिया, अपशब्द नहीं बोले, किसी की निंदा नहीं की, ग्लानी नहीं की, सेवा की, दिन भर सेवा की, कितनों को कोर्स कराया दिन में, ये फिर भी सब साधारण पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ, इन सब को डबल कर दो तो हो सकता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ अर्थात जिसमें पवित्रता बल बन जाए, यह अनुभव। केवल अविवाहित रहना, अनमैरिड रहना, बैचलर स्पिंस्टर रहना, यह पवित्रता नहीं है। यह तो संसार में भी बहुत लोग हैं, परंतु हमारा ब्रह्मचर्य, हमारी पवित्रता शक्ति बन जाए, यह पुरुषार्थ। उस परमधाम की स्थिति का लंबे समय तक अनुभव करे, अशरीरीपन का लंबे समय तक अनुभव, बार बार अनुभव, वैराग इस संसार के प्रति अपनी चरम सीमा पर हो, परमात्मा प्रेम से भरा हुआ चित्त हो, मगन अवस्था हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात वह सुख जो देह की सहायता के बिना प्राप्त हो, वह सुख जो इंद्रिय की सहायता के बिना प्राप्त हो, उसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। शब्दकोश में जो परिभाषा है अतीन्द्रिय सुख की, ये सब अनुभूतियों में रहना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो गलती एक बार की है उसे फिर न करना, अव्यक्त वाणी है बाबा की, जो गलती एक बार की है उसे दोबारा रिपीट न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो स्थिति एक सेकंड पहले थी, अगले सेकंड उससे स्थिति आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। यक्ष की कहानी है महाभारत में, युधिष्ठिर जब आता है, उसके चारों भाई वहां पर मर चुके हैं। यक्ष प्रश्न पूछता है, वो कहता है मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यक्ष उससे पहला प्रश्न पूछता है कि ऐसी वो कौन सी बात है जो संसार में सबसे महत्वपूर्ण है, या ऐसी वो कौन सी घटना है। वो कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इतने अनुभवों से गुजरता है फिर भी सीखता नहीं है, बस यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है और सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति अपने जीवन में इतने अनुभव पाता है फिर भी वही वही गलती बार बार करता है। इसके प्यार में फंसा, दुख हुआ, वहां से निकला किसी और के प्यार में फंसा, वहां से निकला तीसरा चौथा, सीखता कभी भी नहीं। कुछ समय पहले आईएएस एग्जाम में, आईएएस की जो एग्जाम होती है उसमें एक उनको ऐसे राइटिंग आया था, उस ऐसे का टॉपिक था द ओनली लेसन वी हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन। इतिहास से हमने एक ही सबक सीखा है, एक ही पाठ सीखा है, और वो ये कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। इस पर उनको निबंध लिखने आया था, निबंध आया था इस टॉपिक पर। तो व्यक्ति भूले करता रहता है और सीखता नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो गलती, जो भूल, जो धोखा एक बार हुआ है फिर वही धोखा, क्या यह अनुभवी मूर्त आत्मा के लक्षण है? अनुभवी मूर्त अर्थात धोखा न खाने वाले, यह अनुभवी आत्मा की निशानी है। तो एक है साधारण पुरुषार्थ, एक है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात पवित्रता की वह सर्वोच्च अवस्था की अनुभूति, आत्मा मगन हो जाए ऐसी अवस्था। तो इस पवित्रता का जो आधार स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य के बाबा ने पवित्रता की चर्चा ज्यादा की है, सारी मुरलियां पवित्रता के ऊपर है, ब्रह्मचर्य वास्तविकता में इस पर कोई मुरली डायरेक्ट नहीं है। बाबा संकल्पों की पवित्रता की बात कर रहे हैं, स्वप्नों की पवित्रता की बात कर रहे हैं, वहां तक पवित्रता हो। परंतु इस पवित्रता का जो मुख्य आधार है वो है ब्रह्मचर्य, वह चर्या जो ब्रह्म में स्थित करे, या इस ज्ञान मार्ग में भी वह चर्या जो हमें ब्रह्म जो धाम है तत्व उसमें हमें स्थित करा दे परम धाम में, वो है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य की आठ चीजें हैं, एट ब्रिक्स ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर इन आठ गांठ में से एक भी गांठ खंडित होती है, अर्थात हम ब्रह्मचारी नहीं। आठ चीजें हैं टोटल। इन आठ चीजों में से आठ गांठें, एक भी गांठ का यदि खंडन होता है हम स्वयं को ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। इन आठ गांठों का कहीं पर भी खंडन ना हो, ना किसी स्थान में, ना किसी समय, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर इन आठ की आठ चीजों का खंडन ना हो, वो है ब्रह्मचर्य। सबसे पहली सबसे पहली देखना, दर्शन, शास्त्रों ने उसे दर्शन कहा है। एक दूसरों को देखना, योगी आत्माएं एक दूसरों को देखकर अपनी काम वासना की तृप्ति करते हैं। कभी कभी देखने की इच्छा, चाहे फोटो चाहे चेहरा, आकर्षण रूप का देखना। अगर कोई वैसे ही दिख जाए तो वो नेचुरल है, वैसे ही देखा वो नेचुरल। उसी व्यक्ति को दोबारा देखने की इच्छा होना, ये इच्छा है। उसी को तीसरी बार देखने की इच्छा होना, इसे वासना कहा जाता है। देखना, दर्शन, तो सबसे पहला है दर्शन। अगर ये भी हो रहा है, किसी को देखने की बहुत इच्छा हो रही है, अर्थात रूप का आकर्षण है, ये भी माया ही है। इसको माया ही समझना, क्या है उस रूप में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में लिखा है जन्म में दुख, मृत्यु में दुख। जन्म मृत्यु जरा, बूढ़ा होता है कोई तो कहां है वो सौंदर्य, वेयर इज दैट ब्यूटी, कहां है वो सौंदर्य, वो चेहरे पर झुर्रियां जब पड़ती है तो कहां है वो सौंदर्य। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारी आने पर कहां लुप्त हो जाता है सौंदर्य। जाओ जाकर हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड में देख क्या हो, वो सारे कैंसर पेशेंट्स, वो सारे क्रॉनिक डिसीज वाले पेशेंट्स, वो सारी बड़ी बड़ी बीमारियों वाले पेशेंट्स, कोई सौंदर्य उसमें है? सौंदर्य भ्रम है, ब्यूटी इज अ मेंटल कंसेप्शन, इट्स एन इल्यूजन। व्यक्ति में कोई सौंदर्य नहीं है, इट्स अ मेंटल डिसेप्शन। और इस डिसेप्शन को, इस प्रवंचना को इस संसार में द्वापर से अब तक जो भी साहित्यकार हुए, उपन्यासकार हुए, उन सभी ने इसको बड़ा चढ़ाकर एक भ्रमित स्त्री का या पुरुष का चित्र संसार के सामने रखा है, जिसे युवक और युवतियां देखते ही अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट होते हैं और फिर जीवन भर पश्चाताप। आज भी जाकर जेल में देख के आओ, कितने सारे कैदी, कितने सारे वो लोग पश्चाताप में जल रहे हैं। क्षणिक आकर्षण, क्षणिक आवेग, क्षणिक उद्वेग, इंस्टेंट पैशन और प्रोलॉन्ग्ड रिपेंटेंस। क्षणिक आवेग, एक्साइटमेंट और पश्चाताप। तो सबसे पहला कौन सा है? देखना। इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रैक्टिस की वो कौन सी थी? आत्मिक दृष्टि की साधना है, वो भी एक साधना है। सोचो आज मैंने कितने लोगों को आत्मा रूप में देखा, 10, 20, या सुबह अमृत वेले लक्ष्य रखो कि मैं आज कम से कम 50 आत्माओं को आत्मा देखूंगा। कोई भी हो सकते हैं फिर वो, क्योंकि ये अभ्यास ही भूल जाता है। पहला देखना, उससे भी ऊपर दूसरा स्पर्श, दूसरा है स्पर्श, टच। ये जो टच है यहां से माया शुरुआत, इस टच में सुख है क्षणिक, पर क्षणिक सुख के तुरंत बाद एक फ्रस्ट्रेशन भी है, दुख भी है। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, गीता में लिखा है जो भी सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो सब दुख में परिणित हो जाएंगे। जिस जिस सुख में स्पर्श से उत्पन्न जो भी सुख है, चाहे वो खाने का है चाहे काम का है, परंतु खाने का जो सुख है उसका प्रभाव इतना गहरा नहीं है, परंतु काम के जो संस्कार है वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ते हैं। इसके लिए जन्म जन्म व्यक्ति भोगता है, उसके बाद चाहे कितनी भी भक्ति करे कितना भी ज्ञान करे, मरणासन्न होता है फिर भी वासनाओं से छूट नहीं पाता है, फिर भी वंस मोर की कामना अभी भी रह जाती है, क्योंकि काम के जो संस्कार है वो सीधा सबकॉन्शियस पर अटैक करते हैं। बाकी जो भी है वो इतने नहीं, खाना पीना घूमना पहनना फैशन करना ये करना वो करना, उसमें इतना बॉडी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि काम में सबसे ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है। और वो व्यक्ति चाहे ज्ञान में भी आ जाए परंतु उन स्मृतियों का क्या, वो स्मृतियां तो बहुत पक्की होती है, उसके लिए साधारण साधना से वो मुक्त नहीं हो सकती आत्मा। एक तीव्र साधना की आवश्यकता है उस स्मृतियों को नष्ट करने के लिए, टू बर्न द संस्कार। वो जो स्मृतियां है वो जो थॉट्स वो जो संस्कार के रूप में चले गए, वृत्ति बन चुकी है अंदर, उसको मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता है। तो सबसे पहला देखना, दूसरा स्पर्श। कितना आश्चर्य है कि व्यक्ति एक लकड़ी की चीज को स्पर्श करता है तो उसके मन में कोई आवेग उत्पन्न नहीं होते, कोई लोहे को स्पर्श करता है तो कोई आवेग उत्पन्न नहीं होता है, परंतु देह को स्पर्श करते ही आवेग उत्पन्न होते हैं, देहभान जागृत होता है, इंद्रिय विचलित होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है। इसके लिए अनटच्ड, बाबा ने कुमारियों से मुलाकात की है कभी, कुमारी अर्थात अनटच्ड। जगदीश भाई ने अपने किताब में या भाषण में हमेशा कहते हैं उस कन्या के बारे में जो कि जल भर रही है, और वहां एक युवक आ गया, वो कहता है कि मुझे पानी पिलाओ मैं प्यासा हूं। वो युवती कहती है कि पानी तो मैं दूंगी पर अंग से अंग ना लगे, पानी मैं दूंगी परंतु अंग से अंग ना लगे, और वो उसे पानी पिलाती है। बाद में उस युवती को भी नहीं पता, उस युवक को भी नहीं पता, उन दोनों की शादी होती है, और शादी के बाद वो देखते हैं ये तो वही है। वो स्त्री उस पुरुष से कहते हैं तुमने वादा किया था अब निभाओ। कुमारी अर्थात अनटच्ड। माया भी टच ना करे, मायावी पुरुष भी टच ना करे, इस देह को किसी भी पुरुष का स्पर्श ना हो, अर्थात पवित्रता। ऐसी अनडिवाइडेड अखंड प्रतिज्ञा पवित्रता हमारी हो, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी की हमारी प्रतिज्ञा हो, और ये प्रतिज्ञा रोज करनी है, एक दिन नहीं, रोज अमृत वेले एक स्वयं से प्रतिज्ञा करना, एक बाप के सामने प्रतिज्ञा करना, कुछ भी हो जाए ये देह भी त्याग करना पड़े तो भी पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे सारा संसार हमारे विरोध में खड़ा हो जाए, पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आदेश स्वयं भगवान का है। बाबा ने यह नहीं कहा कि इस क्रोध ने तुम्हें दुखी किया है। आज अकल की ही मुरली में था, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है कि काला मुंह कर दिया, क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता है कि पतित बन गए क्रोध करने से, क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता है कि पांचवी मंजिल से नीचे गिरे, केवल काम के लिए कहा जाता है। और भगवान इस संसार में केवल और केवल पतितों को पावन बनाने आए, क्रोधी का कुछ करने नहीं आया है, वो दूसरी बात है। उसका उद्देश्य एक ही है, एक ही अटैक है बस, एक ही विकार ने सारे संसार को गर्त में डाला है, एक ओनली वन। उसका सारा ज्ञान उस एक से मुक्त होने के लिए है। तीसरा प्रशंसा, प्रेज, एप्रिसिएशन, तारीफ करना, दूसरे की तारीफ करना उसके सामने, और उससे भी खतरनाक मन ही मन, काम भाव के साथ प्रशंसा करना, किसी से बहुत अधिक प्रभावित हो जाना। दादी जान की खुद अपना एक अनुभव सुनाते हैं कि दादी ने कभी किसी भाई का कोर्स कराया और बाबा को जाकर रिपोर्ट की, बाबा ये भाई बहुत अच्छा है। तो बाबा ने सुना, ठीक है। उसने कहा, बाबा इसने पूरा कोर्स बहुत अच्छे से किया, बहुत ध्यान से किया, ये बाबा का पक्का बच्चा है, निश्चय बुद्धि बच्चा है, बाबा इसको पूरा तीर लग गया है। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? प्रशंसा, प्रशंसा हमारी ज्ञान युक्त प्रशंसा हो, हमारी प्रशंसा ज्ञान युक्त हो, सीक्रेसी ना हो उसमें, प्राइवेट वाली ना हो, वो उसमें धोखा है, माया है। और मन ही मन प्रशंसा, मित्रों के सामने किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा, उसके गुण की, रूप की, चॉइस की, सिलेक्शन की, उसकी स्पेशलिटीज की, किसी की भी प्रशंसा, अर्थात प्रभावित हो रहे हैं। चौथा, संस्कृत में जिसे केली कहा जाता है, केली अर्थात खेलना, खेलना, प्ले, खेल खेलना, टेनिस, बैडमिंटन या जो भी, वो एक खेल, वो थे दूसरे प्रकार के, एक दूसरे खेल है व्हाट्सएप वाले खेल, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, इधर से एक, उधर से चार, इधर से ऐसा, उधर से वैसा, इधर से रोता हुआ, उधर से हंसता हुआ, ये भी तो खेल ही है, कितना समय जा रहा है इसमें, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, जो बात करना है सबके सामने, छुप छुप के करने की क्या आवश्यकता है, वो भी तो खेल है। एक है स्थूल खेल, एक है सूक्ष्म खेल, इमोशनल प्लेथिंग्स, इमोशनल ब्लैकमेल, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। कितने हो गए? चार, पांच, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कन्वर्सेशंस, प्राइवेट चैटिंग, जिन ऋषि मुनियों ने यह लिखा होगा वो अगर आए और वो सुने कि प्राइवेट चैटिंग, तो उनको समझ में नहीं आएगा हमने क्या लिखा था, ये सब इस दुनिया के शब्द है सब, तब जो थे ही नहीं। तो गुह्य भाष्य, गुह्य अर्थात गुप्त भाष्य, छुप छुप के बात करना, प्रेम पत्र, पहले जमाने में प्रेम पत्र लिखे जाते थे, अभी मैसेज जाते हैं, इन सभी से कहीं ना कहीं लगाव उत्पन्न होता है और ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। प्राइवेट टॉक्स, जो भी हमारा कन्वर्सेशन हो वो क्लियर हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो कि जो हमको छुपाना पड़े, फटाफट डिलीट करना पड़े, कोई देख ना ले, चिंता रहती है लोगों को, कोई देख लिया तो क्यों? हम तो सोचते हैं हम श्रीमत पर हैं, फिर क्यों भय है? अंदर ही अंदर सूक्ष्म भय है, किसी को पता चल गया तो क्यों? सिक्स्थ, संकल्प। छठवां है संकल्प करना। किस चीज का संकल्प? मिलने का, समीप जाने का, इन तरह के सभी संकल्प, किसी ना किसी रीति से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का, फैमिलियरिटी बढ़ाने का, फ्रेंडशिप बढ़ाने का, ऐसे सारे ही संकल्प, रिलेशनशिप को और बढ़ाने का, जो है उतना ही रहने दो, और क्यों बढ़ाना है? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है, शोशीर कविता, किताब का नाम है द लास्ट पोएम। वर्णन किया है एक युवक का, एक युवती का। वो जो स्त्री है बहुत अमीर है, बहुत धनधाट, बड़े परिवार से है, धनाढ्य है। युवक है बहुत ही गरीब है। दोनों को ही आपस में बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं एक को है, दोनों को ही है। दोनों ही शादी भी करना चाहते हैं, परंतु वो स्त्री एक शर्त रखती है कि शादी तो होगी परंतु मैं रहूंगी इस महल में, बीच में एक झील और तुम होंगे उस महल में। वो कहता है ये कैसी शादी है? वो कहती है शादी तो होगी पर हम साथ नहीं रहेंगे, शादी तो होगी पर हम मिलेंगे कब? अपॉइंटमेंट के साथ नहीं। अगर तुम यहां से टहल रहे हो, मैं वहां से टहल रही हूं, अगर मिल गए तो मिल गए। झील में तुम इधर नौका विहार कर रहे हो, मैं इधर से नौका विहार कर रही हूं, अगर कहीं मिल गए तो मिल गए, ऐसी हमारी भेंट होगी। वो कहता ये भी कोई शादी है? शादी फिर करी क्यों रहे जब हम साथ में ही नहीं रहने वाले? वो कहती है कि यही मेरी शर्त है बस, माय ओनली कंडीशन इज दिस, शादी होगी पर तुम उधर हम इधर, बीच में झील। क्यों? वो कहती है कि जैसे ही दो लोग समीप आते और एक दूसरे को जानने लगते हैं, उनके संबंध में जो फ्रेशनेस है, जो न्यूनेस है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर वो अवगुण देखने लगते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच हो, इसके लिए तुम उधर हम इधर। जो भी रिलेशंस है, जो भी संबंध है, उसमें डिटैचमेंट हो, एक ही घर में रहे परंतु हम इधर और वो उधर, और बीच में झील। इस झील का नाम है बाबा, इस झील का नाम है, एक शब्द का नाम है बा बा। जितने हमारे संबंध हो उसमें डिटैचमेंट हो, एक केवल प्रेम 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 प्रेम, तो दुख 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 चालू हो जाएगा। जिनके भी संपर्क में हम रहेंगे वो उधर हम इधर। संबंधों में इतना समीप आ जाना खतरा है बहुत। संकल्प सातवां, अध्यावसाय, संस्कृत शब्द है अध्यावसाय, अर्थात निकट जाने का प्रयत्न करना। पहला है संकल्प, अब है क्रिया, निकट जाने का संकल्प, समीप जाना किसी के फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर रीति से। अध्यावसाय और अंतिम वास्तविक क्रिया, द सेक्सुअल एक्ट। आठ चीजें हैं, आठ गांठे हैं, एट ब्रेक्स ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर इनमें से कोई एक भी खंडन होता है तो वह ब्रह्मचर्य का खंडन है। किसी भी समय, ऑल टाइम्स ऑल प्लेसेस, किसी भी स्थान पे यह खंडन ना हो, किसी भी समय यह खंडन ना हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा, भारतीय संस्कृति कहती है जो ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी 12 साल अगर कोई ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो उसकी काम की जो ऊर्जा है वो ओज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। ऐसे जो वीर्यवान, ऐसे जो तेजस्वी, ऐसे जो तपस्वी आत्माएं हैं, उनकी वाणी में, उनके बोल में एक अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। यह प्रभाव उनके पांडित्य का नहीं है, यह प्रभाव उनके ज्ञान से भी ज्यादा उस प्यूरिटी के बल का होगा। स्वामी विवेकानंद कहीं एक जगह थे विदेश में, विदेश यात्रा के दौरान, ब्रिटिश ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया है, 36 वॉल्यूम्स 36 उसके खंड है। वो एक बार पढ़ रहे थे, उनका एक मित्र आया और उसने कहा कि ये क्या मूर्खता है, कौन लोग है जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिख के रखी है, क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मैन टू रीड ऑल दिस बुक्स इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में भी इतनी किताबें पढ़ सकता है क्या कोई। वो उसको कहते हैं क्या बात कर रहे हो, मेरी तो 11 बुक पढ़ के हो गई है। वो कहता है मजाक कर रहे हो क्या। वो कहता है तुम्हें जो पूछना है पूछो। वो किताब उठाते हैं और जो पूछते हैं उसका सही सही वो जवाब देते हैं। वो कहता है हाउ इज इट पॉसिबल, ये तुमने कैसे किया। वो कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई होल लाइफ, इन्वर्टेड कॉमा, इंग्लिश में यह उत्तर दिया हुआ है, किसी भी काम और कामुक संकल्प को मैंने अपने मन में कभी लाने नहीं दिया। इसके लिए ये जो शक्ति है, कहते हैं पीछे जो नाड़ियां होती है वहां से वो बह के सहस्त्रार में जाती है, वैसे कोई तत्व के जाने की बात नहीं है, शक्ति जाती है। और ऐसा व्यक्तित्व है, तेजस्वी व्यक्तित्व होता है। जीवन की कठिनाई, जीवन की परेशानियां बहुत छोटी चीजें हैं। इसके लिए ये 8 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जब ये पवित्रता, ब्रह्मचर्य जब अखंड होगा तब कहीं जाकर प्यूरिटी का जो हमारे जीवन का आधार है वो सशक्त होगा। और जहां ऐसा पवित्र मन होगा, ज्ञान धारण करने में, ज्ञान को ग्रहण करने में फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम सोचते हैं ज्ञान को जल्दी से जल्दी धारण करें, वो नहीं होगा, क्योंकि आधार प्यूरिटी है और प्यूरिटी का आधार ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य ही खंडित हो रहा है, देह देह खींच रहा है। हम तो सोच रहे हैं ये स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है, पर स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इन द लॉन्ग रन टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। इसके लिए अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली है, 15 नवंबर 2003, सबको पता है, सबने सुनी होगी। उस मुरली में बाबा के महावाक्य है पवित्रता के बारे में, धर्मराज का रूप है बाबा का, वो महावाक्य अभी हम सुनेंगे और इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। संदीप भाई, हाँ, तो ये बाबा के महावाक्य है 15 नवंबर 2003 के, जिसमें बाबा संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं सुनो, कान खोल के सुनो। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने जाए, और बाबा ये वाक्य मुझसे कह रहे हैं यह अनुभव करें।